भगवते वासुदेवाय
ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वपत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 21वां अध्याय महाराज पृथु द्वारा उपदेश श्लोक संख्या 33
तम
एवं
यूयं
भजत
भजत
आत्मा
आत्मा
वृत्तिभिः
वृत्तिभिः
मनः
मनः
वचः
वचः
काय
काय
गुणैः
गुणैः
स्वकर्मभिः
स्वकर्मभिः
अमायिनः
अमायिनः
कामदुघ
कामदुघ
अंग्रिपंकजं
अंग्रिपंकजं
यथा
यथा
अधिकार
अधिकार
अवसित अर्थ
अवसित अर्थ
सिद्धयः
सिद्धयः
तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिः
तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिः
यहां विसर्ग अंत में क्यों है भी के बाद भी ही क्यों कह रहे हैं हम कहाँ है दो बिंदु भी के बाद नहीं है दो बिंदु पहला पहले लाइन तमेव यूयम भजतात्म वृत्ति भी ही यहाँ केवल भी लिखा है लेकिन मैं भी ही बोल रहा हूँ क्यों
र बाद में है इसमें लेकिन हम क्योंकि उस श्लोक को वहां पर अंत जैसा कर रहे हैं इसके लिए
तो र है कौन सा र है आधा र है कहाँ पे है
दूसरे लाइन में
दूसरे लाइन के प्रारंभ में दूसरे लाइन हम शुरू नहीं कर सकते मनोवच है ऐसा नहीं बोल सकते वो मनोवच है परंतु क्या ये पहले दो लाइन वास्तव में एक लाइन है तो इसको आराम इसको भेद करके दो लाइन में लिखा गया है इसलिए ये ऐसे भी और वो होता यदि एक लाइन में होता तो ऐसे होता इसलिए ऐसे लिखा गया है ये ठीक है तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिः
तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिः
मनोवचः काय गुणैः स्वकर्मभिः
मनोवचः काय गुणैः स्वकर्मभिः
अमायिनः कामदुघाङ्घ्रिपङ्कजम्
अमायिनः कामदुघाङ्घ्रिपङ्कजम्
यथाधिकारावसितार्थसिद्धयः
यथाधिकारावसितार्थसिद्धयः
तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिः
तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिः
आप भीड़ भी बोल सकते हैं भी अस्त में भी ही है लेकिन भीड़ भी बोल सकते हैं तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिः
तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिः
मनोवचः काय गुणैः स्वकर्मभिः
मनोवचः काय गुणैः स्वकर्मभिः
अमायिनः कामदुघाङ्घ्रिपङ्कजम्
अमायिनः कामदुघाङ्घ्रिपङ्कजम्
यथाधिकारावसितार्थसिद्धयः
यथाधिकारावसितार्थसिद्धयः
तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिः
तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिः
मनोवचः
वचकाय गुणे स्वकर्मभिः
मनोवचकाय गुणे स्वकर्मभिः
अमायिनः कामदुधाङ्घ्रिपङ्कजम्
अमायिनः कामदुधाङ्घ्रिपङ्कजम् यथाधिकारावसितार्थसिद्धयः
तमेव
तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिः मनोवचकाय गुणे स्वकर्मभिः अमायिनः कामदुघाङ्घ्रिपङ्कजम् यथाधिकारावसितार्थसिद्धयः तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिः मनोवचकाय गुणे स्वकर्मभिः अमायिनः कामदुघाङ्घ्रिपङ्कजम् यथाधिकारावसितार्थसिद्धयः
तम
उसको
एव निश्चयहि यूयम्
तुम समस्त नागरिक
भजत पूजा करो
आत्मा
अपना वृत्तिपरक कार्य द्वारा मन वचः
वाणी
काय
शरीर
गुणैः
विशिष्ट गुणों द्वारा
स्वकर्मभिः
अपने अपने कर्मों से
अमायिनः
बिना हिचक
पढ़ लो हिंदी वाला नहीं है चलिएगा
काम दुख
समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले
अंग्रिपंकजम
चरण कमल की
यथा
जिस प्रकार
अधिकार
सामर्थ्य
अवसित अर्थ
अपने हित के विषय में
पूरी तरह आश्वस्त
सिद्धयः
तुष्टि अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद ऋतु महाराज ने अपने प्रजाजनों को उपदेश दिया तुम सबों को अपने मन वचन देह तथा कर्मों के फल सहित सदैव खुले मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए तुम सब अपनी सामर्थ्य तथा वृत्तिपरक कार्यों के अनुसार पूरे विश्वास तथा बिना हिचक के भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहो तब निश्चय ही तुम्हें अपने अपने जीवन उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी तात्पर्य
बहुत लंबा है ना अच्छा तो पहले जहाँ पहला परिच्छेद खत्म होता है वहां तक पढ़ो
तात्पर्य जैसा कि भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहा गया है स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य मनुष्य को अपने वृत्तिपरक कार्यों द्वारा भगवान की पूजा करनी होती है इसमें चार वर्णों तथा चारों आश्रमों के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ता है अतः पृथु महाराज कहते हैं गुणे स्वकर्म भी इस पदांश की व्याख्या भगवद गीता में इस प्रकार प्राप्त है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः भगवान द्वारा प्राकृतिक गुणों तथा उन गुणों के अंतर्गत विशिष्ट कर्तव्यों के अनुसार चारों जातियां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र बनाई गई जो व्यक्ति सतोगुणी होता है वह निश्चित रूप से अन्यों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होता है अतः वह ब्राह्मण के कार्य सत्य बोलना, इंद्रियों को इंद्रियों का संयम, मन का संयम, स्वच्छता, सहिष्णुता, आत्मज्ञान तथा भक्ति का ज्ञान कर सकता है। इस प्रकार यदि वह सच्चे ब्राह्मण की भांति भगवान की सेवा करता है तो उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य पूरा हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रियों के कर्तव्य है नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, दान देना, राजकाज में वैदिक व्यवस्था का पालन तथा यदि शत्रु आक्रमण कर दे तो निर्भीक होकर लड़ना। इस प्रकार एक क्षत्रिय अपने वृत्तिपरक कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इसी तरह वैश्य अपने वृत्तिपरक कर्मों को करता हुआ अन्न उपजा कर गांवों की सुरक्षा करके तथा अधिक कृषि उत्पादन होने पर आवश्यक व्यापार द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकता है। क्योंकि शूद्रों के अधिक बुद्धि नहीं होती अतः उन्हें सामाजिक जीवन के उच्चतर स्तरों की सेवा करने में श्रमिक की भांति लगे रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य भगवान को अपने मन वचन कर्म से प्रसन्न करना होना चाहिए। जिस प्रकार शरीर के चार विभाग हैं, सिर हाथ पेट तथा पाँव, उसी प्रकार मानव समाज भी मनुष्यों के भौतिक गुणों तथा वृत्तिपरक कर्मों के अनुसार चार श्रेणियों में बटा हुआ है। इस तरह ब्राह्मणों को सिर का, क्षत्रियों को भुजाओं का, वैश्यों को पेट का तथा शूद्रों को पैरों का कार्य करना पड़ता है। जीवन के निर्दिष्ट कर्मों को करते समय न कोई छोटा है न कोई बड़ा, हाँ इनमें उच्चतर तथा निम्नतर जैसे विभाग होते हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र लक्ष्य होने से उनमें कोई अंतर नहीं होता।
अनुवाद दोहराइए। पृथु महाराज ने
अपने प्रजाजनों को
उपदेश दिया तुम सबों को
अपने मन
वचन
देह
तथा कर्मों के
फल सहित
सदैव खुले मन से
भगवान की भक्ति
करनी चाहिए।
तुम सब
अपनी सामर्थ्य
तथा वृत्ति परक
कार्यों के अनुसार पूरे विश्वास
तथा बिना हिचक के
भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहो। तब निश्चय ही
तुम्हें
अपने अपने जीवन उद्देश्य
प्राप्त करने में
सफलता प्राप्त होगी। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ॐ विश्वपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च विदितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो पुनः पृथु महाराज उसी मुद्दे पर अपना प्रवचन जारी रख रहे हैं कि किस प्रकार हमें अपने अपने वृत्तिपरक स्तर के अनुसार हर दृष्टि से पूर्णतया भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। और इस बात को हम पिछले अनेक श्लोकों में पढ़ते आए हैं। और यहां पर दो शब्द सामर्थ्य और वृत्तिपरक, तो सामर्थ्य की दृष्टि, सामर्थ्य क्यों कहा गया है यहाँ पर, अधिकार, अधिकार शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने शारीरिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, भावनात्मक और मानसिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से सामर्थ्य भिन्न भिन्न होता है। अब एक व्यक्ति किसी एक प्रकार के कार्य के लिए बिल्कुल योग्य हो सकता है परंतु दूसरे कार्य के लिए नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता नहीं है। जैसे यदि हम में से किसी को कहा जाए कि आप एक बड़े खेल में जाके आप कुश्ती कीजिए, है क्या ऐसा कोई किसी का सामर्थ्य की जाए विश्व जो सबसे श्रेष्ठ मल्ल योद्धा है उद्धव हरि प्रभु को छोड़कर और कोई जा सकता है? हमारा सामर्थ्य नहीं है ना, तो हम क्यों जाएंगे वो कार्य करने के लिए? तो उसी प्रकार से कोई बोले आप जाके किसी मरीज को देखिए, वो बीमार पड़ा है, मृत्युशैया पे है, आप उसको ठीक कर लो, हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो सामर्थ्य नहीं है ना, तो हमें वैद्य को बुलाना चाहिए। तो अधिकार और सामर्थ्य ये वृत्ति, हमारे वृत्तियों से भी जुड़ा हुआ है, आर्थिक दृष्टि से भी। कोई कहेगा भाई तुम बहुत महंगी गाड़ी खरीद लो, उतने पैसे हैं नहीं हमारे पास, कैसे खरीदेंगे? तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि ये समानता जो है ना, तथाकथित समानता, सब एक होने चाहिए समाज में, ये संभव ही नहीं है। क्या समानता हर दृष्टि से संभव है समाज में? क्या ऐसे होता है? नहीं होता है। देखिए जितने भी कमरे में यहाँ मंदिर में भक्त बैठे हैं, कोई भी किसी दूसरे भक्त की तरह नहीं दिखता है, सही है? किसी का चेहरा किसी दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, सबका अपना बिल्कुल विशेष चेहरा है, है कि नहीं? और हर एक का विशेष अपना अपना स्वभाव है, अपना अपने अपने बात करने की पद्धति है, व्यवहार करने की पद्धति, अपनी अपनी मानसिकता है। हर एक व्यक्ति विशेष है, जुड़वे भाइयों में भी अंतर होता है, यद्यपि कम होता है दूसरों के तुलना में। जैसे जननिवास प्रभु, पंकज आंग्री प्रभु, दोनों में बहुत समानता थी, बहुत ज्यादा दिखने में, यहाँ तक कि केवल जो मायापुर में रहने वाले भक्त हैं दोनों में अंतर जान सकते थे। मैं भी थोड़ी देर के बाद जाता था ना, तो मुझे भी नहीं पता चलता था। जब मैं मायापुर में रहता था तो देख देख के फिर पता चलता था कि ये कौन है, पंकज आंग्री प्रभु है, ये जननिवास प्रभु। फिर एक दो साल के बाद जब मैं गया फिर से, अरे कौन है, ये है कि ये है। तो ऐसे दिखने में होते, फिर भी उनकी वृत्ति भी लगभग एक जैसी थी, फिर भी अंतर थे उनमें, थोड़े बहुत अंतर थे। तो जुड़वे भाई होने के बाद भी बिल्कुल एक जैसे कोई भी नहीं हो सकते हैं, तो ये समानता कैसे? पुरुषों में भी कितनी भिन्नता होती है, पुरुष और स्त्री में भी कितनी भिन्नता होती है, स्त्री समाज में भी कितनी भिन्नता होती है, मनुष्य और पशुओं में कितनी भिन्नता होती है। तो ये जो आधुनिक एक दर्शन है या विचारधारा है कि हमें एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें सब लोग एक होंगे, जैसे ये साम्यवादी लोग इत्यादि कहते हैं, क्रांति के द्वारा समानता स्थापित करना चाहते हैं, हिंसात्मक क्रांति, वायलेंट रेवोल्यूशन। जब मैं बचपन में था, मैं बंगाल में रहता था, तो कलकत्ता में वहाँ पे नक्सलबारी का आंदोलन समाप्त होने को जा रहा था, फिर भी उस समय काफ़ी उसकी क्या कहते हैं, उसकी आग अभी भी जल रही थी। नौजवान लोग जो है विश्वविद्यालय में से नक्सल हो जाते थे, साम्यवादी माओवादी हो जाते थे और बंदूक उठाकर सब करते। बंगाल में बहुत भयंकर हो गया था, आजकल भारत में भी है। तो वो चाहते, वो देखते कि गरीबी इतनी है, ये लोग इतने गरीब हैं, वो लोग इतने धनी हैं, और ये धनी लोग जो हैं ये गरीबों के ऊपर जी रहे हैं, गरीबों का खून चूसकर ये लोग अपना धन बना रहे हैं, ये लोग ऐश कर रहे हैं और ये लोग तड़प के मर रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, हम क्रांति करेंगे, जो धनी लोग हैं उनको या तो मार डालेंगे या कम से कम उनसे धन छीन लेंगे और गरीबों में बांटेंगे और सबको एक जैसा कर देंगे। ये उनकी धारा है, विचारधारा। तो आप बताइए, आप में से कौन बताएंगे कि ये विचारधारा सही है या गलत और क्यों? आप में से कौन बताएंगे? हाथ ऊपर कीजिए।
विचारधारा सही नहीं हो सकती है, क्योंकि अपने अपने कर्मों के हिसाब से एक व्यक्ति एक एक स्तर पे या फिर परिस्थिति में रहता है, तो उसको जबरदस्ती हम दूसरी परिस्थिति में अगर हम सोचते हैं कि उसको डालेंगे तो भी वो उस परिस्थिति को बनाए नहीं रख सकता। इसलिए उसके अनुसार, उसके वृत्ति और उसके चेतना के अनुसार जिस प्रकार से वो जो जो परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में रहेगा भी, हम उसके जबरदस्ती उसके परिस्थिति को बदल नहीं सकते।
तो ऐसे ऐसा प्रयास कैसे है, कृत्रिम
विफल है और कृत्रिम है।
ठीक है।
साम्यवाद के बारे में बोले तो साम्यवाद में वो लोगों का जो प्रयास रहता है कि हम एक इक्वल सोसाइटी बनाएंगे, बट इक्वल सोसाइटी को चलाने के लिए भी कोई चाहिए। तो ये दुनिया का एक्सपीरियंस है कि वो जो चलाने वाले हैं वो भी बाद में जो है वो डिक्टेटर्स बन गए, ताकि उनमें अच्छे गुण नहीं थे। तो जब तक आध्यात्मिक साम्यवाद नहीं होगा, जो प्रभुपाद बोला करते थे कि जिसमें एक राजा जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव रहता है वो जब तक नहीं रहेगा, तब तक दुनिया में इक्वलिटी जो है, जितनी बेसिक मिनिमम है जो लोगों को मतलब अन्न वस्त्र निवारा, ये जो बेसिक नेसेसिटीज है इसके लिए जो चाहिए सब लोगों को समानता, उसके लिए भी नहीं आ सकती जब तक आध्यात्मिक साम्यवाद नहीं होगा।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम जब स्कूल में थे हमने किताब पढ़ी थी हमारी अंग्रेजी में विषय में, उसका नाम था एनिमल फार्म। तो ये साम्यवाद क्रांति के ऊपर रशिया में जो रूस में हुआ था 100 साल पहले, उसके ऊपर एक टीका थी। इसमें क्या है कि एक किसान रहता है, तो उसके खेत वगैरह में बहुत सारे उसने पशुओं को पाल के रखा है, सुअर भी है और गाय बैल भी है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये गाय बैल इकट्ठे होकर क्या करते हैं, षड्यंत्र रचाते हैं कि ये जो हमारा मालिक है ना, ये हमारा बहुत शोषण करता है, ये हमको हमारा खून चूसता है, हमसे काम करवा लेता है, खुद देखो ऐश कर रहे हैं, तो उसको निकालो यहाँ से। तो क्या करते हैं, एक दिन ये सब मिल जाते हैं और जैसे ही बाहर आता है घर से तो सब लोग आक्रमण करते हैं, बेचारा अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है और फिर ये लोग ही राज करना शुरू करते हैं। तो फिर उनमें से कोई कौन राजा, सब किसी एक को चुनना होगा ना जो जो व्यवस्थापन संभालेगा। तो अभी मैं भूल गया क्योंकि इतने साल हो गए। तो एक पशु को उन्होंने चुना तो वो बन गया। जब किसी के हाथ में शक्ति आ जाती है ना, पद मिल जाता है किसी को, तो उसके सर में चढ़ जाता है ना, सर में चढ़, छोटा भी कुछ पद मिल जाए ना तो ऐसे हो जाता है, है कि नहीं, ऐसे हो जाता है। तो उसको भी मिल गया पद। तो उन्होंने कई सूत्र बनाए थे कि कैसे हमारा अभी खेत हमारी जो है फार्म कैसे चलेगा, सब लोग समान होंगे। तो धीरे धीरे से ये जो बना आगे, उसने अपने एक दो दो प्रिय लोगों को पास पर रखा और कहा सब लोग समान हैं, लेकिन समानों लोगों में से हम थोड़ा आगे है, फर्स्ट अमंग इक्वल्स, सबसे पहले हम हैं। फिर उन्होंने थोड़ी ज्यादा सुविधा लेना शुरू कर दिया और अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया और इस प्रकार से धीरे 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 वही होने लगा। तो ये बहुत प्रसिद्ध एक उपन्यास है, एनिमल फॉर्म। तो ये साम्यवाद के ऊपर टीका कि ऐसे इस तरह से समानता जब हम समाज में कृत्रिम रूप से करने के लिए जाते हैं, ये संभव है ही नहीं। थोड़े दिन पहले मैं प्रभुपाद जी का एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें प्रभुपाद जी इसी तरह की बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि देखो, एक मारवाड़ी है, एक कोई धनी व्यक्ति है, वो क्या करता है, केवल ये देखता है इसका मूल्य क्या है, इसकी कीमत कितनी है, इसकी कीमत कितनी, इसकी कीमत, ऐसे ऐसे करके 5-10 मिनट में लाखों रुपए कमा लेता है। इधर से कुछ खरीदता है, उधर बेचता है, इधर बेचता है, उधर खरीदता है, ऐसे करके कुछ कुछ कर लेता है और थोड़े दिनों में लाखों रुपए कमा लेता है। और एक दूसरा आदमी है, बेचारा दिन भर परिश्रम करता है, ठेला खिलता है, मजूरी करता है, लेकिन उसको कितना मिलता है? जो उसको एक घंटे में आधे घंटे में मिलता होगा उस व्यापारी को, इसको सारा महीना सारा साल परिश्रम करके मिलता है। तो क्यों नहीं आप उस व्यक्ति को बोलेंगे कि तुम भी ऐसा करो जैसे वो आदमी कर रहा है? नहीं है, वो उसकी उतनी बुद्धि नहीं है करने के लिए। ये जो समझ रहा है, ये क्या कर रहा है, कि कैसे इसकी गहराई में जाके समझना करना, नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं ये तथाकथित समानता को लाना समाज में संभव नहीं है, ये केवल एक भ्रम है। और क्योंकि जो आखिर समाज को चलाने वाले लोग भी तो वही है ना, जो प्रजा है उनमें से तो आए हैं, और इसलिए वो भी प्रजा की तरह ही व्यवहार करेंगे। अंधा यथांधेर पिनीयमाना ते पीछे तंत्र्याम पूर्वधाम निबद्धा। तो क्योंकि उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, उनके होश ठिकाने अभी तक ठीक से नहीं आए हैं, तो भले कितने भी आदर्शवाद वृत्ति के हों, हम इंकलाब जिंदाबाद लाल सलाम और ऐसे वैसे करके वो सब क्रांति करके पद में आ जाते हैं, एक बार आ गए पद में तो फिर सर में चढ़ जाता है, वो भी शोषण करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि वास्तव में यदि हम विश्व के इतिहास को पढ़ें, बड़े बड़े जितने भी ये साम्यवादी क्रांति हुए हैं उनमें सब ऐसे ही हुआ, और कितना अत्याचार हुआ, बल्कि इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। जैसे आप में से कितने भक्तों ने इतिहास पढ़ा है अपने पाठशाला में? इतिहास सबने पढ़ा ना, विश्व इतिहास पढ़ा है ना। तो रूस, रूस में क्या हुआ? बहुत बड़ी क्रांति हो गई ना 1917 में, तो साम्यवादी लोग आ गए, वहां के राजा को हटाया, मार भी दिया उनके परिवार के सदस्यों को, भाग गया। तो फिर क्या हुआ बाद में? ये लेनिन वगैरह सब आ गए, और लेनिन के बाद फिर एक स्टालिन नाम का आदमी आया, और वो तो कसाई था बिल्कुल, जानवरों के लिए नहीं मनुष्यों के लिए। उसके राज में उसने लगभग कितने 3 करोड़ लोगों को मार दिया, विश्व युद्ध पहले विश्व और दूसरे विश्व युद्धों में जितने नहीं मरे कुल मिलाकर, उससे ज्यादा ये एक तथाकथित साम्यवादी नेता ने मार दिया अपने ही लोगों को। जो भी उसके विरोध में कोई आवाज उठाता था, जिसके भी कोई भिन्न मत होते थे उससे, या जो जिनको वो खतरा अनुभव करता था कि ये आदमी मेरे को कुर्सी से हटा देगा, ये मेरी बात नहीं मानता है, हमारे शासन के प्रति कुछ उल्टा बोल रहा है, तो उनको जेल में डाल देते या उनको ऐसे स्थान में भेजते जहाँ पर केवल बर्फ ही बर्फ है और इतनी ठंडी की आदि ठंड के कारण आदमी मर जाए, ऐसे स्थान में उनको भेज देते थे। तो ऐसे 3 करोड़ से 4 करोड़ लोगों को मार दिया उन्होंने। चीन में ऐसे ही एक साम्यवाद क्रांति हुई, हिंसात्मक क्रांति, और वहाँ भी जो नेता था उसको भी भगा दिया, वो भी ताइवान चला गया, दूसरा एक छोटा सा प्रांत है, देश है। तो ये माओ, माओ जब आ गया, उसका नाम, आज ये माओवादी बोलते हैं ना, माओवादी नेपाल में भरे पड़े हैं और बिहार में भी इधर उधर, आजकल ये सब छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसमें भी ये लोग सब फैले हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो महाराष्ट्र में भी नंदुरबार, नंदुरबार नहीं, वो जो गढ़चिरौली और वो सब प्रांतों में ये सब लोग हैं। तो जब वो आए, उन्होंने भी ऐसे किया, उनके राज्य में भी करीब करीब 3-4 करोड़ कम से कम लोग मर गए, उन्होंने मार दिया उनको। फिर बहुत सारे वहाँ पे अकाल भी पड़ गया उनके मूर्खतावश जो निर्णय थे उसके कारण। जब गहराई से सोचते नहीं थे, ऐसे ही कोई कार्य कर डालते थे। एक उदाहरण देता हूँ, अपने जो विरोध में लोग थे, जो विद्रोही थे, उनको तो जान से मार ही दिया, लेकिन और कैसे उन्होंने नियम बनाए, उन्होंने देखा कि ये जो चूहे हैं और फिर चिड़िया हैं और ऐसे दो कोई और प्राणी थे,
कबूतर
पता नहीं थे कि नहीं, चिड़िया और चूहा और दो कोई थे जो कि खेत वगैरह में बहुत नुकसान करते थे। तो उन्होंने सोचा कि चूहे खास करके आके खा जाते हैं ना सब, घर में भी खाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि इनको सब मार डालना चाहिए। तो इन्होंने ये चार पशुओं को मारने के लिए एक देश भर में क्रांति चलाई, देश भर में, और चिड़िया को मारने के लिए उन्होंने अपनी सेना को नियुक्त किया। सेना का हर एक सैनिक एक ही काम के पीछे पड़ा था, चिड़िया जितने भी उड़ रहे हैं सबको मारो। और केवल सेना नहीं, गांव में, शहर में जितने भी लोग थे सबको आदेश था कि आपको सड़कों पे आना है और जहां चिड़िया दिखी मारने का प्रयास करना है। लेकिन चिड़िया तो उड़ जाती है ना, तो कैसे मारें, क्या करें? तो उन्होंने क्या किया, विश्वास नहीं होगा आप सबको ये सुनकर, कि उन्होंने आदेश दिया, कानून बनाया कि आपको सही समय पर, जो निर्धारित समय पर बाहर आना है, आपके बर्तन लाने हैं और बर्तन को पीट पीट के ढंग 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 आवाज करना है, पेड़ों के पास जाकर जहाँ भी कोई चिड़िया के लिए आश्रय है ना, कोई बिल्डिंग है, कुछ है, कुछ पेड़ है, तो चिड़िया को बैठने के लिए नहीं देना कहीं पे। तो चिड़िया आएगी या ढंग 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 डर जाएगी, दूसरी जगह उड़ के जाएगी, वहाँ भी लोग ढंग 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 कर रहे हैं, वहाँ भी नहीं बैठ पाएगी, कहीं और किसी बिल्डिंग में जाएगी, वहाँ पे ढंग 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 करने आए। इस तरह से उड़ते 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 वो थकान के कारण गिर के मर जाती थी। ऐसे लाखों चिड़ियों को उन्होंने मार दिया। इसी तरह से अलग अलग ऐसे नियम बना के चूहों को मार दिया, लाखों चूहों को मार दिया। परंतु वो पर्यावरण के नियम को नहीं जानते थे। पर्यावरण में एक परस्पर निर्भरता की एक पद्धति होती है, एक योजना जो भगवान ने बनाई है, एक प्राणी दूसरे के ऊपर निर्भर है, दूसरा तीसरे के ऊपर, इस तरह से एक श्रृंखला होती है। और जब हम इसको पहचानते नहीं हैं और बीच में श्रृंखला में किसी एक को मार देते हैं, दो को मार देते हैं, तो सारी श्रृंखला खत्म हो जाती है, फिर उत्पात हो जाता है। और ये चिड़िया जो है, उनको लगता था कि ये हमारे खेत में खा रही हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, परंतु ये चिड़िया क्या करती थी, दो अनाज तो खाते थे, ठीक है, परंतु जितने भी ये सब कीड़े वगैरह थे जो फसल को खाते थे, उनको भी खाते थे चिड़िया। लेकिन जब चिड़िया मर गए तो ये सब कीड़े अभी फसल को खाने लगे और फसल उगता ही नहीं था, और फिर मिट्टी में उपजाऊ शक्ति भी खत्म हो गई, उर्वरा शक्ति जो थी, और फिर ऐसे अकाल पड़ गया कि लाखों लाखों करोड़ों लोग उसी में मर गए, खाने के लिए कुछ नहीं था उनका। फिर उन्होंने ये नेम अपना बदल दिया। तो ये सारे चीजें हैं साम्यवादी के कारण। वो सोचते हैं सबको एक समान बनाएंगे, फिर क्या हिंसा अन्यों पे करेंगे, नहीं देखते जानवरों पे भी। प्रभुपाद जी बताते हैं भागवतम के अनुसार जानवर भी प्रजा है। यदि आप चाहते हो समानता चाहिए तो केवल मनुष्यों में क्यों, पशु और पक्षी को भी समान देखना चाहिए, उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। तो इनकी जो एक साम्यवादी की साम्यवाद की दृष्टि है ये बिल्कुल गलत है। ये संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति को अलग अलग योग्यता या सामर्थ्य प्राप्त होता है। कोई किसी के अंदर वो कला होती है चित्र बनाने के लिए, जैसे देखो एक भक्त ने सुंदर चित्र बनाए, यदि मैं ऐसे चित्र करने जाऊं तो नहीं होगा ना, गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन उसके हाथ में कला है, वो कर सकता है। एक बुद्धि भगवान ने दी है उसको, वो कला दी है भगवान ने। एक ऐसे चित्रकार है भारत का ही, महाराष्ट्र से कहीं तो है, वो विश्व भर में जाता है और वो क्या करता है, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को बिठाता है और उसका चित्र निकालता है उसको बिठा के, लेकिन जो दर्शक लोग होते हैं उनको पता ही नहीं चले क्या कर रहा है वो, कुछ कर रहा है अपने ये लेके पेड़ अपने रंग वंग लेके कुछ कर रहा है उधर, लेकिन उनको पता नहीं चल रही है, को उस आदमी की तरह दिखता ही नहीं, ये क्या कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता उनको। फिर वो जब समाप्त कर लेता है फिर क्या करता है, उसको उल्टा करता है और उल्टा करके बिल्कुल उसका चेहरा समझ गया, तो उस व्यक्ति का मुंह जो है वो चित्र निकाल रहा है लेकिन उल्टा। ये बुद्धि कैसे आई है जब देखने वाले को पता नहीं चलता है कि ये क्या है, करने वाले को कैसे पता हो रहा है, ये भी एक बुद्धि है ना। बुद्धि का मतलब ये नहीं कि केवल हम गणित में अच्छे हों, है ना, ये एक प्रकार की बुद्धि है। तरह तरह की बुद्धियां होती हैं, चित्रकला की बुद्धि होती है, शिल्पकला की बुद्धि होती है, फिर संगीत की बुद्धि होती है, किसी को जो धुन है राग है वो दिमाग में बैठ जाते हैं, वो रागों को इधर उधर कर सकते हैं। कई लोग हमारे जैसे हमको याद नहीं रहता, फिर हमको करना इधर उधर का राग स्वर ऊपर नीचे सब हो जाता है। ये बड़े बड़े राग ये वो सब अपने मन में रख सकते थे संगीतकार, ये भी एक तरह की बुद्धि है। फिर दार्शनिक बुद्धि, दार्शनिक लोग कोई ऐसे होते ऐसे ऐसे बात करते समझ में नहीं आते ये क्या बोलते तो इस तरह से तरह तरह की बुद्धियां होती हैं। किसी को एक व्यवहारिक बुद्धि ऐसी होती है व्यवसाय में, ऐसे उनको पकड़ आता है कहाँ क्या पैसे कैसे डालना क्या करना इधर उधर का, दूसरा आदमी जाए उसको नहीं होगा। कोई खेल में बहुत बुद्धिमान होता है, कैसे खिलाड़ी को इधर रखे उधर रखे, नहीं तुम उधर जाओ तो ये करो, दूसरे आदमी को इतना सब गहराई में पता नहीं चलेगा। तो ये सारे जो वृत्तियां हैं, योग्यताएं हैं, कलाएं हैं, तरह तरह के बुद्धियां हैं, ये कैसे मिलती हैं सबको, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार मिलते हैं। तो जन्म से ही व्यक्ति अनेक प्रकार के योग्यताओं से युक्त होता है। 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं दैवी गुण और असुर गुणों के बारे में, कब से प्राप्त होता है,
अभिजातस्य
भारत, अभिजातस्य मतलब जन्म से ही प्राप्त होते हैं, और उनको फिर थोड़ा बहुत उनका विकास किया जा सकता है, उनके और अनुशीलन करके उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, परंतु यदि वो वृत्ति है ही नहीं ना अपने अंदर क्या करेंगे। जैसे मेरे अंदर उतनी कला नहीं है चित्र निकालने की, अब मैं अभ्यास करूँगा सीखूँगा, एक अच्छे चित्रकला के अध्यापक से सीखूँगा, सीख सीख के अभ्यास कर करके भी ठीक है कुछ तो कर लूँगा, लेकिन इस तरह का कभी नहीं बना पाऊँगा क्योंकि वो है ही नहीं अपने अंदर, तो नहीं बना पाएंगे ना। तो मैं बोलूं कि वही क्यों अच्छा चित्रकार है, मैं भी ऐसा ही चित्रकार मुझे होना चाहिए, नहीं होगा ना, मेरे पास है नहीं वो क्षमता। तो इसलिए इस प्रकार की जो समानता हम बनाना चाहते हैं समाज में, संभव नहीं है। जन्म से ही सब लोग अलग होते हैं, कोई एक धनी परिवार में जन्म लेता है, कोई गरीब परिवार में जन्म लेता है, तो सबको समान कैसे कर सकते हैं हम। और यदि कोई अमीर परिवार में जन्म ले चुका है परंतु उसके भाग्य में नहीं, वो गरीब होगा, जो गरीब है वो धनी हो जाएगा यदि उनके भाग्य में लिखा है तो। इसलिए ये जो एक बात प्रभु या पृथु महाराज बता रहे हैं कि अपने अपने अधिकार के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, वृत्ति परक, अपने वृत्ति के अनुसार, अपने स्थान के अनुसार व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। तो कौन से कार्य करने चाहिए, यहाँ पर भगवान बताते हैं, मनोवचः काय गुण ही स्वकर्म भी, अपने कर्मों के द्वारा, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कार्यों से केवल भगवान की भक्ति करो। तमेव यूयम भजत आत्म वृत्ति भी, भजत मतलब भजन करना, उनकी सेवा करना। तो जो भी आपकी वृत्तियां हैं हे मेरे प्रिय प्रजा के सदस्य, आपकी जो भी क्षमताएं हैं, जो भी आपकी योग्यताएं हैं, जो कि आपके पास कलाएं हैं, उसके अनुसार आप भगवान की सेवा करो। कैसे करो, काया मन वाचा, अपने शरीर से करो, अपने मन से करो, अपने वाणी से करो। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। कौन सा श्लोक है प्रसिद्ध, वो 11वें स्कंद का, काय ने वाचा समर्पयामि समर्पयेतत्। तो इसका अर्थ क्या है,
कायेन वाचा मनस इंद्रियेव, काया शरीर से, वाचा वाणी से, मन से और इंद्रियों से।
कायेन वाचा मनस इंद्रियेव,
बुद्धि आत्मा, बुद्धि और आत्मा, अनुसृत स्वभाव, और मैंने जो भी स्वभाव को स्वीकार किया है उसके द्वारा, करोमि यत् यत् सकलम परस्मै, जो भी मैं करूँगा सब कुछ मेरे द्वारा जो भी होगा, नारायणायति समर्पयेत्, मैं वो सब कुछ नारायण को समर्पण करूँ।
बहुत अच्छा, करोमि यत् यत् सकलम
परस्मै
परस्मै, तो मैं जो भी कुछ काम, जितने भी सारे काम मैं करूंगा, अपने वाचा से, अपने मन से, अपने इंद्रियों से, अपने बुद्धि से, अपने वाणी से, मैं क्या करूंगा, उनको समर्पित करूंगा भगवान श्री नारायण के चरण कमलों में। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। इसलिए जो भी हमारे पास है उसे हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जो भी स्थान में हम हों, तो आध्यात्मिक दृष्टि से, भक्ति के दृष्टि से कोई भेद नहीं है। भले भौतिक दृष्टि में अभेद हो या भेद हो भौतिक दृष्टि से, जैसे हम अभी वर्णन कर रहे थे, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से भेद नहीं है, क्योंकि हम सब जीवात्मा हैं। तो अपने शारीरिक स्वधर्म सबके अलग अलग हो सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक स्वधर्म सबका एक ही है, और वो है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, हम आध्यात्मिक साम्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं, जहाँ पर भक्तों के समाज में आकर हम सब एक हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि कौन किस जाति का है, कौन कौन सी भाषा बोलता है, कौन धनी है या गरीब है, ये सब नहीं देखते हम। भगवान की भक्ति के रास्ते में ये सच्चा साम्यवाद है, परंतु जो ये राजनैतिक साम्यवाद करते हैं, ये लोग नास्तिक लोग होते हैं, वो भगवान को मानते नहीं। उनके दर्शन में ऐसे ही लिखा गया है कि हम भगवान को नहीं मानते, भौतिकतावादी लोग हैं वो लोग। और वो क्या कहते हैं कि सारी संपत्ति सरकार की है, वो लोग कहते हैं साम्यवादी लोग। प्रभुपाद कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, सब भूमि किसकी है, गोपाल की, बस अंतर ये है। और जब जब तक जो समाज को चलाने वाले लोग हैं वो अपना हृदय शुद्ध नहीं करेंगे भगवान की भक्ति के द्वारा, तब तक वो साम्यवाद सिद्धांतों के अनुसार भी अपने राज्य को संभाल नहीं पाएंगे और समाज का सर्वनाश होगा, जैसे कि प्रत्यक्ष अनुभव है। और एक दक्षिण पूर्व एशिया में कंपुचिया कंबोडिया नाम का एक देश है, लेओस कंबोडिया, जहाँ पे विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर विश्व में, भारत में नहीं है, दक्षिण पूर्व एशिया में है। अभी तो निर्विग्रह नहीं है वहां पर, कितने एकड़ पर फैला हुआ है वो एक मंदिर, 400 एकड़ ऐसे कुछ है, बहुत सारे, बहुत लंबा चौड़ा, इतने सारे सुंदर शिल्प और सब कला वहां पर दिखाई पड़ता है आज भी। तो वहां पे उस देश में साम्यवाद जब हुआ था तो वहां भी पोलपोट नाम का आदमी था, तानाशाही था लेकिन साम्यवाद के नाम पे कितने लोगों को मार दिया उसने, करोड़ों लोगों को मार दिया। और एक देश है उत्तर कोरिया, वहां भी एक एक महोदय बैठे हैं वो भी कितने लाखों अपने लोगों को मार डालते हैं। ये साम्यवाद का ये परिणाम होता है। चीन आजकल साम्यवाद देश अपने को कहलाता है लेकिन अर्थव्यवस्था साम्यवाद नहीं है। साम्यवाद किस देश में, तानाशाही चल रही थी, बस उतना ही है। इसलिए सारे कृत्रिम जो नए नए मनगढ़ंत ढंग से लोग अपने अपने दर्शनों को बनाते हैं ना, विचारधाराओं को, उससे क्या होता है, समाज में केवल उत्पात ही होता है। इसलिए समाज की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, ये सब सीखने के लिए हमें श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तो समाज की व्यवस्थापन हो या अर्थव्यवस्था हो, सबके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसलिए ये सारे अन्य मनुष्यों द्वारा मानसिक चिंतन के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले दर्शन को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए पृथु महाराज बताते हैं कि धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। और स्वयं वो ऐसे एक राजा थे जो पालन भी करते थे, प्रजा पालन की शक्ति उनमें थी। तो इस प्रकार से पृथु महाराज अपने प्रजा को उपदेश दे रहे हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? हाँ अक्षय।
जैसे पिछले युगों में देखा जाता है कि राजऋषि हुआ करते थे जो सनातन धर्म के नियमों के अनुसार और ब्राह्मणों के मार्गदर्शन के अनुसार राज्य चलाते थे, वैसे इस युग में अभी वैसे राजाएं क्यों नहीं है, या फिर भगवान ऐसे लोगों को क्यों नहीं भेजते जो व्यवस्थापन अच्छा करे, और अगर टॉप से स्टार्ट करे तो फिर आसान हो जाता है।
क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में ऐसे नहीं होना है। कलयुग में क्या होना है, वॉक्स पॉपुली, मतलब प्रजा ही राजा है, प्रजातंत्र। ये लैटिन शब्द का एक ये है, वॉक्स पॉपुली मतलब प्रजा की इच्छा जो लोकप्रिय है, वॉक्स पॉपुली वॉक्स ड्यू, ऐसा कुछ एक है उनका लैटिन में, कि प्रजा का, प्रजा की वाणी भगवान की वाणी है, जो प्रजा कहती है वो भगवान कहते हैं, ऐसे मानना चाहिए। बल्कि भागवत का सिद्धांत उल्टा है, जो भगवान कहते हैं वो प्रजा को कहना चाहिए। यहाँ प्रजातंत्र में क्या होता है कि जो भी प्रजा कहती है वो होना चाहिए। प्रजा कहती है कि हमको शराब की दुकान खोल के दो, भगवान की वाणी है चलो खोल के दो, राजा खोल देंगे। हाँ, अंधा यथा अंधे उपदीयमान, तो प्रजा को, प्रजा तो आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं, तो ये सब कलयुग के लक्षण है, इसलिए ये सब अपेक्षित है यहाँ पर। फिर भी थोड़े बहुत महर्षि रहे हैं, ये राजऋषि रहे हैं, केरल में कितने रहे कलयुग की शुरुआत में, कुलशेखर महाराज, और फिर कृष्ण देव राय रहे, या महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज रहे, है ना, ऐसे राजपूतों में से भी कितने रहे, महाराज प्रताप रुद्र रहे उधर, थोड़े बहुत रहे हैं। परंतु कलयुग जैसे बढ़ते जाता है तो वैसे ऐसे लोग प्राय खत्म हो जाते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हमारे भक्तों के बीच में, जैसे हमारी भक्त, हमारा भक्त समाज बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो भक्तों के बीच में से कोई एक आएगा ऐसे परीक्षित महाराज के समान, और फिर अच्छी तरह से राज करेगा। एक दिन होगा, दो चार पीढ़ियों के बाद, क्या पता।
महाराज आप उदाहरण दे रहे थे एक चित्रकार का, जो कला उसमें है वैसे हम कितना भी अभ्यास करेंगे तो नहीं होगा। तो हमारे प्रकल्प के लिए, गोकुलधाम प्रकल्प के लिए, जहाँ पे सब भक्तों की आवश्यकता है, लेकिन मूलतः हम खेती, गोरक्षा, तो जो भी प्रशिक्षित होके आ रहे हैं वो शहर के वातावरण से प्रशिक्षित होके आ रहे हैं, तो कितना भी अभ्यास यहाँ के खेती का करेंगे, गोरक्षा का करेंगे, तो उस तरह नहीं कर पाएंगे जो बचपन से इसमें प्रशिक्षित है। तो फिर यहाँ पे कैसे हम इसका,
फिर भी जितना हो सके हम कर सकते हैं ना, जितना हो सके। ये तो ऐसा नहीं चित्रकला की तरह तो नहीं है, थोड़ा बहुत करके व्यक्ति सीख सकता है, अपने आप को ढाल सकता है उसी रास्ते में। लेकिन ये बात सही है कि जो बचपन से करता आया है उसके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा स्वाभाविक रूप से वो कर पाएगा, अन्य को थोड़ा ज़्यादा कष्ट होगा, परंतु ये परिश्रम करके सीखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम बचपन से नहीं किया तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं, परंतु हमको भी प्रयास करना चाहिए। जैसे हमको कीर्तन नहीं आता है, कोई किसी को बहुत अच्छा कीर्तन करने आता है, बहुत मधुर आवाज़ है, कला है, इसका मतलब है कि ये नहीं है कि हम कीर्तन करेंगे नहीं, वह मुझे गाना नहीं आता है तो मैं कीर्तन नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। तो इसलिए हमें अभ्यास करना है। एक उदाहरण है कि हम उस तरह से नहीं कर सकेंगे, लेकिन कुछ कहने को हम कर सकते हैं, चित्र निकाल सकते हैं, लेकिन उनकी तरह नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हमको करना ही नहीं चाहिए, ठीक है।
अगर वो करेगा, वो व्यक्ति जो बहुत ही दक्ष है, तो उसका फल अच्छा रहेगा।
हाँ,
लेकिन ये व्यक्ति करेगा, प्रयास ही रहेगा, फल तो नहीं मिलेगा।
नहीं मिल रहा अभी आपको, इतना सब खेती करके कर रहे हो ना, मिल रहा है ना फल, आप सबके उगाए हुए पपैया खा रहे हैं, और अमरूद खा रहे हैं, और रागी और चावल खा रहे हैं ना, फिर आलू भी खा रहे हैं, मूंग दाल भी खा रहे हैं, कोकम शरबत भी पी रहे हैं, क्या समस्या है ना?
हाँ, जैसे कि आपने बताया कि हर एक का अपना अपना सामर्थ्य होता है, हर एक व्यक्ति विशेष होता है, हर एक इसमें दर्शक है। तो जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, तो जैसे कि शास्त्र, जब हम शास्त्र अध्ययन करते हैं, कुछ भक्त ऐसे होते हैं वो तुरंत समझ जाते हैं उसको, और कुछ भक्त इतना प्रयास करते हैं समझ ही नहीं पाते हैं। तो उस व्यक्ति को लगता है कि शायद मुझ में वो अपने आप को बहुत कम महसूस करता है कि शायद मुझे शास्त्र इतना समझ नहीं आ रहा, तो वो नाराज हो जाते हैं इसी समय पर।
तो इसीलिए उनको महाराज पृथु का आदेश पालन करना चाहिए, वृत्ति भी ही और अधिकार है, सबकी अलग अलग वृत्ति होती है, सबका अलग अलग अधिकार होता है। जो भी भगवान की कृपा से हमें मिला है उसका पूर्णतया उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। भले किसी में कुछ ये शास्त्र कंठस्थ करने के लिए, समझने के लिए क्षमता ज्यादा हो सकती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि मुझे प्रयास नहीं करना चाहिए। मैं उस भक्त की तरह भले न कर पाऊं, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। मेरी जितनी क्षमता है उसका 100% करना चाहिए। यदि उसकी ज्यादा क्षमता है परंतु वो केवल 5% कर रहा है, मेरी बहुत कम क्षमता है परंतु मेरी क्षमता के अनुसार मैं 100% कर रहा हूं, तो भगवान मेरे प्रयास से ज्यादा प्रसन्न होंगे। अंततः भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप कितना समझ गए, आप कितना धुआंधार प्रवचन दे सकते हैं, आप कितने श्लोक बोल सकते हैं। आखिर भगवान ये नहीं देखते, भगवान देखते हैं कि हम कितने शुद्ध भक्त बन गए। और अलग अलग योग्यताओं के अनुसार व्यक्ति अपने अपने तरह से सेवा करेंगे। तो किसी को ऐसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी देखना चाहिए भाई ये भक्त को भगवान ने कितनी बुद्धि दी है, वो एकदम पड़क से पकड़ लेता है सब चीजों को, कर सकता है, तो ठीक है मेरे पास उतनी नहीं है, लेकिन जितना है मेरे पास मैं पूरा प्रयास करूंगा। जैसे एक भक्त बहुत सुंदर कीर्तन करता है और मैं नहीं कर सकता उस तरह से, तो मैं आके निराश होकर नाराज होकर बैठ जाऊं? नहीं, भले मैं उसकी तरह सुंदर कीर्तन नहीं कर सकता, लेकिन मेरी क्षमता जितनी है उतना प्रयास करके मैं कर सकता हूं, भगवान प्रसन्न होंगे उससे। भगवान हमारी भौतिक कला को नहीं देखते। यदि ऐसे होता तो इतने बड़े बड़े संगीतकार हैं वो सब शुद्ध भक्त माने जाते आज बड़े बड़े बाहर के देश में, है ना। तो हमारे दर्शन कला को या हमारे चित्रकला या संगीत कला आदि को भगवान नहीं देखते। यदि किसी के पास है तो वो इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करेगा तो उससे भगवान अप्रसन्न होंगे। होके भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, कंजूसी कर रहे हो, धन है भगवान को नहीं दे रहे हो, बुद्धि है भगवान के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हो, कला है भगवान के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो इससे भगवान नाराज हो जाएंगे, अप्रसन्न हो जाएंगे। तो जो भी हमारे पास है उसका 100% प्रयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए, बस सरल सी बात है। कम हो ज्यादा हो कोई बात नहीं, आखिर कम ज्यादा हो देने वाले कौन है, भगवान ही है। तो जिसको ज्यादा है उसको भी भगवान ने ही दिया है, जिसका कम है उसको भी भगवान ने दिया। तो जिसके पास ज्यादा है उसको अहंकार नहीं होना चाहिए, और जिसके पास कम है उसको नाराज नहीं निराश नहीं होना चाहिए। दूसरे के पैसे के ऊपर घमंड करने में क्या लाभ। मैंने जाके किसी से 10 लाख रुपए उधार लिए और जाके बेड़ डिंडोरा पिटने, देखो मैं कितना धनी, मेरे पास 10 लाख रुपए है। अरे तुम्हारा पैसा है नहीं तो क्यों ऐसा बोल रहे हो, तुम्हें तो उधार लिया किसी दूसरे से। तो उसी तरह से कोई ज्यादा बुद्धिमान है तो बुद्धि दी किसने, भगवान ने, तो भगवान की बुद्धि है वो। यदि कोई व्यक्ति सोचने लगे देखो मैं कितना बुद्धिमान हूँ, अरे भाई तुम्हारी नहीं है, भगवान ने दी है तुमको, और तुम यदि इस प्रकार से घमंड करोगे और ये बुद्धि का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए नहीं करोगे तो ये बुद्धि छीन ली जाएगी, अगले जन्म में और कुछ बन जाओगे। तो प्रश्न ये नहीं है कि क्या हमारे पास कोई विशेष कोई योग्यता कम है या अधिक है, प्रश्न ये है कि जो भी हमारे पास है भगवान की कृपा से उसका क्या हम सही तरह से और सही मात्रा में भगवान की सेवा के लिए उपयोग कर रहे हैं या नहीं, बस। इसलिए तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अरे वो भक्त कितना ऐसा है देखो मैं नहीं कर सकता, निराश हो जाना, या किसी दूसरे भक्त को सोचना देखो मैं कितना अच्छा कर सकता, अरे ये कुछ भी नहीं कर, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, है ना। दोनों तरह से नहीं सोचना चाहिए, ठीक है।
बहुत बार ये वृत्ति भी है मतलब मेरे अंदर क्या वृत्ति है वो पता करना ही सालों साल लग जाते हैं,
बाकी सबको पता चलता है। हम सोचते हैं कि हमारी वृत्ति क्या हमको नहीं मालूम, लेकिन बाकी सबको पता होता है। हमारे कितने सारे मित्र बैठे हैं ना पास पास में, सब सब देखते हैं, सबको पता होता है, पता चल जाता है ना, और अपने आप को भी पता चल जाएगा ना। और ठीक है थोड़ा बहुत समय भी लग जाए समझने में तो कोई बात नहीं, लगने को थोड़ा समय। कभी कभी बचपन से ही पता चलता है। दो दिन पहले ही एक गृहस्थ दंपति से अर्जेंटली मुझे बात करना चाहते थे अपने बच्चों के बारे में। तो एक बच्चा लड़का है, वो इतना बुद्धिमान है, इतना बुद्धिमान बन गया है कि अभी वो हर चीज़ में संशय करता है। अभी भागवत कुंभ करता है, बचपन से भक्ति में है, लेकिन अभी ऐसे ऐसे प्रश्न करता है, माता पिता अभी चकाचौंध रह गए, क्या अभी कैसे प्रश्न पूछ लिया इसने। हाँ वो चिंतित है कि ये बहुत ज़्यादा ही बुद्धिमान है ये। फिर मेरे से वो इस पे इंटरनेट पे कॉल करवाया उन्होंने। और लड़की कैसी है, वो तो बिल्कुल क्षत्रिय, मतलब क्षत्रिय। उसके कमरे में सारे सैनिकों के वो तस्वीर पड़े हैं, और उसको सैनिक बनना है, मिलिट्री में भर्ती होना है उसको, और वो लड़कों के साथ जाके फुटबॉल खेलती है ना, और लड़कों को भी उसमें टक्कर लेती है, और इस तरह का ये लोग एकदम ये हो गया कि ये लड़का जैसे बन गई है ना, कैसे क्या करना चाहिए इसको अभी ना। और माता पिता दोनों बहुत नरम आराम स्वभाव के हैं, ये दो बच्चे ऐसे कैसे हो गए हमारे, है ना। तो बुरे नहीं है बच्चे, अच्छे हैं, लेकिन प्रवृत्ति ऐसी। तो हो सकता है ये लड़की जो है पिछले जन्म में कोई सैनिक हुई होगी, इसलिए बचपन से उसको उसी में रुचि है। बाकी उसके जो कक्षा के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनकी तरह नहीं, मैं उनकी तरह लड़कियों की तरह नहीं बनना चाहती, बचपन से ऐसे बोलते आए वो, तो किसी ने उसको सिखाया नहीं ये सब, उसकी वृत्ति ही है, पूर्व जन्मों के संस्कार उसको मिले हैं, ऐसे ही बनी है वो। और माता पिता चिंतित हो रहे थे, ये बोलती है मैं सोल्जर मिलिट्री में जाऊंगी, तुम चिंता नहीं करो, ये भक्त है, भक्त रहेगी। अब सबको एक तरह से नहीं कर सकते, और जो लड़कियां हैं मैं उनके लिए क्लास लेती हूँ, वो कितने एकदम शांत लड़कियां हैं, सब सुनती हैं, और तो कोई बात नहीं, ये रानी लक्ष्मीबाई हो गई आपके कुटुंब में, ऐसा समझ लो झांसी की रानी आ गई आपके घर में, तो क्या कर सकते हैं, है ना उसका स्वभाव, तो उसको क्यों तुम डांटते हो, उसके स्वभाव के उसको जीने दो, उसको उसको जबरदस्ती उसको दबा के रखने से वो और ये हो जाएगी। वो झांसी की रानी के पता है ना, वो भी युद्ध में निकल पड़ी थी घोड़े के ऊपर सवार होकर, अपने छोटा बच्चा था उसका, बच्चे को पीठ में ऐसे बांध के निकली थी, ये कथा मालूम है ना आपको। तो ये भी आपके घर में झांसी की रानी पैदा हो गई, हाँ तो ठीक है, उसको आप ज़्यादा मत बोलिए कुछ, इतना ही है, चार नियम का पालन करना है, कृष्ण भक्त रहना है, उसके बाद कैसे होगा ये अलग बात है ना। तो लड़का भी था, जो बात किया मैंने उससे, तो अच्छा बुद्धिमान आगे चल के बहुत करेगा वो, लेकिन जिस तरह से पिताजी सोच रहे हैं, माता सोच रहे हैं कि वो इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, यार वो सब भूल जाओ। माता पिता भारत में यही है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, बस यही चलते हैं। अभी ऋषिकेश के माता पिता जैसे कितने माता पिता हैं, जो बोलेंगे बचपन से इसको ब्रह्मचारी बनना है, चलो आके उसको प्रोत्साहन दिया। ऐसे माता पिता बहुत कम है कि नहीं। तो लड़का बोलता ये लोग मेरे को IIT बोलते, मेरे नहीं जाना, मेरे को करना ही नहीं है, गणित भी अच्छा नहीं लगता मुझे, ये नहीं अच्छा लगता। बोलो क्यों उसको जबरदस्ती कर रहे हो, उसको नहीं पढ़ना है ना, उसको कुछ पत्रकार बनना है, बनने तो उसको पत्रकार, वहाँ भी धूम मचाएगा, पत्रकारी हो जाएगा, इतना बुद्धिमान हो जाएगा वहाँ पे, ऐसा भक्त भी पत्रकार बन जाए तो अच्छा होगा। आज सब नास्तिक लोग पत्रकार हो रहे हैं, सब अच्छा बन जाएगा। देखिए हर एक की वृत्ति ऐसी है, कभी कभी बचपन से ही पता चलता है, कभी कभी देर लग जाता है। तो ये लड़की पिछले जन्म में सैनिक हुई होगी और वो सैनिक का किसी माताजी से आसक्ति हुआ होगा, मृत्यु के समय उसका बारे में स्मरण किया, श्री का शरीर मिल गया, लेकिन वो सैनिक की वृत्ति रही अभी। NDA में जाना चाहती हो, अभी शुरू हो गया, मैंने वो बोल रही थी कि NDA में अभी लड़कियों को भी अलाउ कर रहे हैं। NDA मतलब मालूम है ना,
नेशनल डिफेंस,
उसमें जाना चाहती हूँ। मैंने कुछ बोला नहीं लेकिन ठीक है, केवल सुना। अभी किसने उसको सिखाया नहीं ये सब, माता पिता हैरान है कहाँ से ये आ गया इसके अंदर, पिछले जन्म से आ गया। उसके वातावरण में जितने भी लोग हैं, किसी ने ऐसी कोई बात, प्रहलाद की तरह ना, प्रहलाद को किसने सिखाया भक्ति के बारे में, पूर्व जन्म से ही आया ना, और भगवान की कृपा मिली। तो कभी कभी लोगों की वृत्ति जो है वो आसानी से पता चल सकता है। जैसे मारवाड़ी परिवार के लोग होते हैं ना, तो खून में रंग रंग में वो व्यापार होता है है ना क्या आदिरस गुजराती को और यदि वो धार्मिक हो और भक्त हो तो फिर भगवान के लिए सब कर लेंगे। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था व्यापारी, और तो वो इतना पैसा 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 पैसा, दिन रात पैसा, सब उसके परिवार के सदस्य हैरान हो गए, इसको कैसे बदलना, इसको कुछ पैसे के सिवाय कुछ बात ही नहीं करता ये आदमी। तो परिवार के सदस्यों ने बैठ के कुछ सोचा, क्या करेंगे क्या करेंगे। फिर उनका बड़ा लड़का था, ये भी बूढ़ा हो गया था, तो लड़का बड़ा हो गया था, तो कहा लड़के को कि तुम उसको बनारस इधर उधर तीर्थ स्थानों में ले जाओ, हो सकता है तीर्थ स्थानों में जाके थोड़ी इसकी बुद्धि कुछ ठीक हो जाएगी, भगवान के बारे में सोचने लगेगा। हाँ तो बोला ठीक है। तो किसी न किसी तरह से जोर लगा के वो आदमी जाना नहीं चाहता था, अरे मेरा दो दिन का नुकसान हो जाएगा, क्या होगा, मैं जाऊँ नहीं, जाओ जाओ जाओ, ज़बरदस्ती करके भेज दिया उनको। तो गए बनारस, गए गंगा घाट में बैठ रहे थे, वहाँ वो सब शरीर जल रहे हैं देख रहे हैं, और फिर उनकी आँखों में आंसू आ गए देख रहे थे। तो बेटा ने सोचा, अरे चलो अभी कुछ इंसानियत आ गई मेरे पिताजी में, अभी कुछ शायद सोच रहे होंगे कि यह मृत्यु क्या है, संसार क्या है, देखो सब कुछ खत्म हो जाता है, पैसा यहीं रह, शायद ऐसा सोच रहे होंगे। तो पिताजी का ऐसे बैठे थे, तो पिताजी को पूछा, क्या पिताजी कैसे लग रहा है आपको, इधर हम आ जाएंगे, मुँह छोड़ के यहाँ पे आ जाएंगे अभी, क्यों, यहाँ पे देखो कितने लोग मरते हैं और कितने लकड़ी का इस्तेमाल होता है चिता के, तो मैं इसमें व्यवसाय करूंगा तो कितना पैसा मिलेगा तो बेटा बोला क्या करेंगे अभी
स्थिति ज्यादा विकट हो जाती है कि अगर किसी भक्त के घर में अभक्त बच्चा पैदा हो जाए, यानी हो जाए, और वो सिखाने पे भी नहीं सीखे तो माँ बाप का एक नेचुरल रहता है टेंडेंसी कि बेटा भी भक्ति में आए, और फिर कर किसी गलत चीजों में पड़ गया बेटा, तो अब ये सोच के कि ये तो इसका वृत्ति ऐसी थी तो छोड़ा भी नहीं जा सकता।
नहीं देखो, प्रयास करने के बाद भी ऐसे हो तो फिर हरी इच्छा बोल के छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, संस्कार देने चाहिए, तो फिर क्या कर सकते हैं, उसके पूर्व जन्म के संस्कार। ऐसा नहीं कि हम नियंता हैं कि हम जैसे कहते हैं हमारे बच्चे भी वैसे होने चाहिए। हम में से कितने हैं जिनके पिता माता पिता ने चाहा नहीं था कि ब्रह्मचारी बन जाए, है ना, बन गए ना, है कि नहीं? जानकार दृष्टि से देख रहे हैं सब, समस्त वैष्णव प्रभु माता पिता ने प्रोत्साहन दिया था कि जाओ ब्रह्मचारी बनो, नहीं ना भंडन के लो ना तेरे
घर के सामने ही पिताजी के घर के सामने आए थे, दादा विनोद निलय के सामने आए थे इनकी माता।
तो जो पिछले जन्म से संस्कार लेके आते हैं क्या कर सकते हैं। प्रभुपाद के बच्चे भी ऐसे भक्त नहीं बने, भगवान कृष्ण के भी ऐसे बच्चे हो जाते हैं जो असुर बन जाते हैं, भौमासुर हो जाते हैं, नहीं भौमासुर नरकासुर, नरकासुर हाँ भौमासुर ही नरकासुर भौमासुर ऐसे होता है।
माँ बाप के लिए दुखद स्थिति तो हो जाती है,
हो जाती है। तो माता पिता के भी पिछले जन्मों के कर्म है कि उनको ऐसे हुआ, क्या कर सकते हैं। ये अच्छा है ब्रह्मचारी ना है कि नहीं, तो बच्चा क्या करेगा आगे, क्या सताएगा, कैसे हैरान करेगा हमको, कोई झमेला नहीं है ना। हाँ
महाराज, वृत्ति को प्रोत्साहन देना और किसी का एक वृत्ति के प्रति आकर्षण होना, जैसे अगर वो किसी का वृत्ति मैनिफेस्ट हो रहा है तो उस समय अगर किसी का आकर्षण किसी के प्रति है, सपोज ब्राह्मणत्व के प्रति है या क्षत्रिय के प्रति है, तो अभी उसके मन में दो कंसेप्शन रह सकते हैं कि एक ब्राह्मणत्व का स्तर बहुत ज्यादा ऊपर है या ब्राह्मण कुछ काम के नहीं है, क्षत्रिय कुछ काम के है। तो अगर पहले केस में देखा जाए कि ब्राह्मण जो है स्तर बहुत ऊपर है, तो इवन एक की वृत्ति मैनिफेस्ट होती है तो वहाँ पे फिर फॉल्ट फाइंडिंग होगा कि आपका स्तर ये नहीं। अब दूसरे जोन में देखा जाए कि ब्राह्मण तो कुछ काम के ही नहीं है, क्षत्रिय कुछ काम के है, तो उस केस में भी वो जो वृत्ति प्रदर्शित कर रहा है उसकी वृत्ति ट्रांसफर करने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो जो सूक्ष्म तरीके से जो हम देखते हैं उसकी सीमा क्या होनी चाहिए।
देखो सबसे पहली बात है कि ऐसा नहीं कि केवल हम जो मन में आए वो सपना देखते रहें कि मुझे ये होना है मुझे वो होना है। सपना देखना एक बात है, इच्छा करना एक बात है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है। कोई कहे मैं क्षत्रिय बनना चाहता हूँ, मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना वो बनना चाहता हूँ, लेकिन क्या हम हैं वैसे। इसलिए केवल अपने आप को निर्धारित नहीं, वैदिक सभ्यता में यह निर्णय गुरुकुल में गुरु करते थे, माता पिता के साथ चर्चा करके, फिर अपने पत्रिका को देखकर इत्यादि सारे लोग मिलके फिर निर्णय करते थे कि इसको कैसे आगे ले जाना है। अभी आजकल क्या है, सब लोग एक तरह के होना चाहते हैं, तो नहीं हो सकता ऐसे। परंतु भक्ति के रास्ते में कोई ऊंच नीच का सवाल नहीं है। किसी की प्रवृत्ति कैसे भी क्यों ना हो, उसको भगवान से जोड़ना चाहिए बस, यही है। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो बेकार है ये बेकार है, कोई बेकार नहीं है, चारों वर्ण में से कोई भी बेकार नहीं है। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, सर है, भुजाएं हैं, पेट है, पांव हैं, चारों ही आवश्यक हैं शरीर के लिए। तो समाज के लिए ये चारों वर्ण जो है बहुत महत्वपूर्ण है और लाभदायक है। तो इस तरह का घमंड नहीं होना चाहिए किसी को भी। उसकी वृत्ति भले एक तरह की हो परंतु दूसरे निम्न है या बेकार है ऐसे नहीं सोचना चाहिए। चलो हरि राम प्रभु।
मैं सोच विचार कर रहा था कि फ्रॉम कम्युनिटी में एक पार्ट टेम्पल और इसमें दूसरा क्षेत्रीय वैश्य और शूद्र, ये तीनों भी टेम्पल को सेंटर रखते हुए सेवा करेंगे। वही जब हम सिटी का टेम्पल को कंपेयर करेंगे तो कल टेम्पल है और समाज जो है अभी तक हमारा जैसा हमको चाहिए पूरा जो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो वो टेम्पल सेंटर नहीं है। तो इस इधर ये चारों लोगों को भी स्पेस मिलेगा जिधर टेम्पल में जो नहीं मिलेगा, मगर इधर टेम्पल सेंटर होके ये सब लोगों को स्पेस मिलेगा। तो इसलिए इधर कुंभार हो लोहार हो सुतार हो सब लोग टेम्पल को सेंटर रखते हुए काम कर सकते हैं। जो टेम्पल में किने चुने लोग जो ब्राह्मणत्व को मेंटेन करके सो वो रहते हैं तो टेम्पल में वो हम ले सकते हैं, मगर मास में फार्म कम्युनिटी में सबका सब इतने। तो इधर प्रश्न ये उठ जाते हैं महाराज, वो फार्म कम्युनिटी मतलब टेम्पल ही अलग है और ये फार्म अलग है या
नहीं? नहीं, एक समाज, सब एक पूर्ण संपूर्ण समाज है जिसमें भगवान, भगवान का मंदिर आदि केंद्र बिंदु है जीवन का। सब लोग जुड़े हुए हैं मंदिर से, चाहे वो कोई भी सेवा क्यों न कर रहे हो, कोई ऊंच नीच का सवाल ही नहीं है। सब लोग अपने अपने व्यक्ति के अनुसार अपने अपने रुचि के अनुसार सेवा कर रहे हैं, बस फर्क इतना ही है। भगवान की दृष्टि में कोई ऊंचा नीचा नहीं, ना हमारी दृष्टि से होना चाहिए।
जैसे आपने बोला कि जिसकी जैसी कला है उसको वैसे भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे देखते हैं कि जिनमें ज़्यादा भौतिक जैसे कला है जैसे सिंगिंग नहीं तो पेंटिंग, तो वो उतना जब अपनी कला को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करें तो उनको ज़्यादा प्रेरणा मिलती है भक्ति में। और अगर किसी में कला नहीं है तो उनकी प्रेरणा कहाँ से आनी चाहिए?
हर एक की कुछ ना कुछ कला है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ हर एक के पास है। जो भी भगवान ने हमें दिया है भले वो कम हो, भले भगवान ने चलो कोई भी कला नहीं दी है, जो भी हम सब की सेवा कर सकते हैं ना। अंततः है कोई संगीत में कर रहा हो सेवा, कोई भी कुछ कर रहा हो, अंततः हम सेवक हैं। यदि वो अन्यों की सेवा करेगा भगवान की सेवा करेगा बस वो अपना जीवन सफल बना पाएगा। अन्यों की सेवा करके श्रवण करके कर सकता है कोई भक्त, ऐसे हो सकता है उसकी कोई कला ऐसे न हो परंतु ध्यान से सुनता है, ये अन्य जितने भी कलाएं हैं उससे ज़्यादा है, वो अपना जीवन सफल बना सकता है। क्योंकि सोए बिना प्रवचन में बैठता है, ध्यान से सुनता है, भले ज़्यादा समझ भी नहीं सकता है लेकिन सुनता है ध्यान से, ये बहुत बड़ी योग्यता है। तो हरेक के पास भगवान की सेवा के लिए कोई सीमा नहीं है, जो भी कुछ है जितना भी है वो इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि जब वो वृंदावन राधा दामोदर मंदिर में रहते थे तो एक महिला थी, माता जी थी, अनेक वर्षों से वो केवल एक ही सेवा करती थी, यमुना से जाके जल लाके राधा दामोदर को देना। क्या कला थी उसमें उनके लिए, ना वो कीर्तन करती थी, ना वो अर्चा विग्रह की सेवा करती थी, ना वो फूलों की माला बनाती थी, ना कुछ, कोई भी कला नहीं थी, परंतु सरल सी सेवा हृदय से करती थी। रोज प्रतिदिन प्रातः काल में जाके ठंडी हो गर्मी हो बारिश हो कुछ हो, एक दिन भी नहीं चुका जाके यमुना का जल लाके राधा दामोदर को देती, प्रभुपाद जी बोलते थे ये जाएगी वापस भगवान के धाम। तो कोई कला ऐसा लग रहा था कोई कला नहीं, लेकिन हृदय की भक्ति थी। तो भक्ति है तो कोई सीमा नहीं है, कोई भी सेवा हम करेंगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं, सही? ठीक है हाँ। हरे कृष्णा, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गोकुल धाम की जय, गौर प्रेमानंद।